आयत 117, आगे उनके दौ के बाद अब मूसा अलैहि सलाम का मौका है। वहीना इला मूसा नल की असा, और हमने वही की मूसा को के डालो तो सही जरा क्या अपना असा। फइजा हिय तल्कफु मा याफिकून, तो वो अज़ा बनकर निगलने लगा इन सब को जो वो घड़ लाए थे, यानी मूसा के असा का फिकना था कि वो झूठे तिलसम को निगल गया। यहाँ से क्या पता चलता है, अल्लाह ने वही की। उस वक़्त तक मूसा को भी नहीं पता था क्या होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है इसके अंदर एक, कि मूसा गए लेकिन उनको ये तो नहीं पता था ना कि ये वाले जादूगर क्या जादू ले आएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे अल्लाह ने सुझा दी। मैं इसको थोड़ा सा टैली करके बताती हूँ आपको इन सारी चीज़ों को। जैसे आप देखिए, मूसा भी दीन के दाई बनकर गए, अभी तो वो एक आलिम के तौर पर नहीं है क्योंकि तौरात अभी कोई नहीं नाजिल हुई, अभी तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने उनको सुझाया, ये जो औ है ना, ये सुझाने का भी मानी आता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम लोगों को अल्लाह के दीन की बात बताने जाते हैं, तैयारी कुछ और होती है, सोच कुछ और होती है, लेकिन वहां जाकर हालात का तकाजा ये होता है कि वो मौजू नहीं कुछ और मौजू छेड़ा जाए, किसी और एंगल से बात हो, क्योंकि ऑडियंस वैसे नहीं है और सबसे बड़ी बात माहौल वैसा नहीं है। आप लेके गए एक बहुत ज्यादा लिखने वाली बात, पॉइंट्स नोट कराने, आयतों के नंबर नोट करने वाला दर्ज, कि चले आज थोड़ा सा जरा एजुकेशनल दर्ज देते हैं। वहां गए तो देखा कि माहौल बड़ा लयर था, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और ये चीज बीसियों के सैकड़ों बार मैंने अपने पिछले सालों में देखी है, घर आके अक्सर मैं यही कहती हूँ जुमला, कि आज फिर अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद की, जो बात अल्लाह ने जिस तरह करवा दी मैंने ऐसे नहीं सोची हुई थी, ये हकीकत है। तो ये जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह के काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए एहसास डालता है। तो इससे एक और मौका आपके और मेरे लिए समझने की भी बात है कि माहौल को समझना चाहिए। कहीं भी जाए आप, छोड़े दर्स को तो छोड़े, दर्स सारे थोड़ी देते हैं, हमेशा नहीं देते, आप कहीं भी दीन की बात की नहीं सके, चले आज अपनी नेवर के घर चलती हूँ, उसको मिसाल है कि इस्लाम की बात करूंगी, ऐसे सीढ़ी देने जा रही हूँ, कुछ भी, वहां गए मियाँ बीवी की लड़ाई देख ली, वहां गए कोई बीमार पड़ा है, क्या अब आपको वहां इस्लाम की बात करके आनी चाहिए थी, वो कहेंगे हमारे तौर ही मसले पड़े हुए, आप इस्लाम का मसला ले आए। तो हमेशा दावत देते हुए घरों में, शोहरों को, बच्चों को, नेबर्स को, जिसको दीन की दावत दें, पहले माहौल देखें कि इस वक्त कौन सी चीज फायदेमंद होगी और कौन सी नहीं होगी। खैर, मूसा का सा मैदान में गया, जरा आप इमेजिनेशन में लाए, मैं तो हर चीज को विजुअलाइज करती हूँ, फिर मुझे मजा आता है कि इतनी रस्सियां और इतने सांप थे और मूसा ने सिर्फ एक सांप फेंका, बेसिकली ऐसा फेंका, वो सांप बना और वो सारी रस्सियों को खा गया। और फिर हुआ क्या, आयत 118, फबकल हक व बतल मा कानू यअमलून, बस हक जाहिर हो गया और जो कुछ वो कर रहे थे वो बातिल होकर रह गया। ये है क्लाइमेक्स इस वाक्य का, मूसा का एक हक पूरी सोसाइटी के बातिल को खा गया। आज के दौर का मुज़्ज़ा है कुरान, जो काम मूसा के असा ने किया आज वही काम अल्लाह का कुरान करता है। पूरी दुनिया में फसाद है ना, आप सारे ऑर्डर्स पढ़ ही रहे हैं ना, कहीं सेक्स का अजाब, कहीं नाफरमानियों का, कहीं गुनाहों का, कहीं इकोनॉमिक्स डिसऑर्डर। एक दफा जब ये हक वाला कुरान आएगा ना सोसाइटीज में, लोगों को अमली तौर पे मुसलमान इसकी एप्लीकेशन दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह फवक्कल हक। आपको पता है कि जिस दिन मक्का फतह हुआ, नबी सल्लम मक्का में दाखिल हो रहे थे और आपकी जुबान मुबारक पर कौन सी आयतें थी, قُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو ہے ہی دم دبا کے بھاگنے والا، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں جو چھڑی تھی آپ اس سے بابا میں جتنے بتوں کو توڑتے جا رہے تھے، آپ اپنے قصوا پہ تھے، ایک سفید کبوتری تھی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو توڑا، پھر حکم دیا حضرت علی اور شاید مقداد یا کچھ اوروں کو کہ جاؤ اور مکہ کے اطراف میں جو بھی بت ہیں ان کو توڑ دو، آج اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے ضرب کلیم کا نام سنا، کیا ہے بھلا علامہ اقبال کی کتاب کیوں ہے، یہ تھی ضرب کلیم، یہ موسیٰ کی ایک ضرب پڑی تھی تو فرعون کا سحر جادو ٹوٹا۔ آگے آپ پڑھیں گے یہی ضرب کلیم دریا میں پڑے گی تو موسیٰ کے لیے راستے بن جائیں گے، آج اسی کی ضرورت ہے۔ سچی بات ہے، ہم اگر اپنے ادب کو بھی نہیں پڑھتے نا تو پھر ہم अपने दीन को भी नहीं समझ पाते। आज इसकी जरूरत है। हाथ है बंदा मोमिन का, हाथ खुदा का। ये आगे अब जो दो सूरतें आ रही हैं, मुझे अभी से बुखार चढ़ रहा है सोच के इन दो सूरतों को हम होल्ड कैसे करेंगे अपने सीनों में। सूरत अनफाल और सूरत तौबा मेरे लिए हर वक्त एक एक चैलेंज है और फेवरेट मोस्ट। और मैं सोचती हूँ कि ये नबियों के किस्से पढ़ा के फिर आप उसमें अल्लाह के नबी के किस्से चलेंगे। पूरी सीरत है। अभी भी मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं सोच के। हम जैसे लोग कि जिनको अभी मैनेज ही नहीं करना आ पा रहा अपनी जिंदगी को और कुरान को, उनके लिए तो ये बातें बहुत बड़ी हैं। लेकिन इसका यकीन रखिए और आप खुद पे फख्र करें कि अल्लाह तूने मुझे इस अल हक के रास्ते पे बुलाया। देखिए अल हक कौन है? अल्लाह की जात है। अना हक का दावा किसी ने किया था, तारीख ने उसको बुला दिया, बातिल फिरका उसके पीछे चल गया। लेकिन अल हक के कलाम हक को लेकर निकलेंगे तो इंशाल्लाह फहुलिबु हुनालिक, वो सब जादूगर उसी वक्त मगलूब हो गए। वन कलबु सागिरीन, और वो सब जलील व ख्वार होके रह गए। आयत 119 है। जू ही मूसा का असा सांप बना खाया, जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है। क्यों भला? क्यों? क्योंकि हीरे की कदर जौहरी जानता है। एक डॉक्टर है ना, उसको फौरन पता चल जाएगा कि किस जगह दूसरे डॉक्टर से गलती हुई या किसने कहाँ ठीक किया। हमें नहीं पता चलता ना। एक पेशे के लोग, एक प्रोफेशन के लोग दूसरे की गलतियां खामियां ढूंढ लेते हैं। इसीलिए कभी किसी को कोई अच्छा कहे ना, बाज लोग आम लोग जो होते हैं आमतुन्नास, तो वो किसी की तारीफ करें तो उससे खुश ना हुआ करें। अगर आपकी कोई कर दे तो बिल्कुल ना खुश हो। आपकी तारीफ के आपके पेशे का आपसे बड़ा कोई आपका उस्ताद आपकी तारीफ करे। आपको तो कि हमारे असलाफ अपने तालिब इल्मों की बिल्कुल तारीफ नहीं करते थे। हम तारीफ ना करें तो लोग नाराज हो जाएंगे। वो कहते थे इनके दिमाग में हवा भर जाएगी। और अभी इन्होंने किया ही क्या? और उस्तादों के मुंह से एक जुमला सुनने के लिए बाज दफा स्टूडेंट्स एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे। और कभी मिल जाता था तो वो उनके लिए एक किस्म की आज की रिटर्न सनद और सर्टिफिकेट होता था कि उस मौके पे ये बात मुझे कही उन्होंने। लेकिन आज हमारा कल्चर फर्क है। हमारे बच्चों को स्कूलों में पहले दिन ही वो अप्रिसिएशन शुरू हो जाते हैं। कहते नहीं मोटिवेशन होता है, नहीं ये लालच होता है, शिर्क आ जाता है इसमें। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजजा देकर जादूगर तो समझ गए कि ये सच है, फौरन मगलूब हुए। पर गुलीबू क्या समझ आ रहा है? मजहूल, पैसिव वॉइस है इंग्लिश में अगर लिखें तो। यानी खुद नहीं डले, अंदर से किसी ताकत ने उनको गिरा दिया। हक के आगे झुके, हक के आगे जब झुके अल्लाह ताला ने उनको झुकने की तौफीक दी। एक अपसाइड डाउन है इनकी पर्सनैलिटी। अगर आप चंद आयतें ऊपर जाके देखे तो आते ही क्या कह रहे थे कि अगर कामयाब हो गए तो मिलेगा क्या? जादू, कबीरा गुना, शिर्क, अकबरुल कबायर और लालच दुनिया का। ये पर्सनैलिटी थी उनकी। और हक का मुकाबला ओवरनाइट भी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा के जादूगर सुबह के वक्त उठे तो जहन्नमी थे, इतने जुर्म है। और चाश्त के वक्त वो जन्नती बन के अपनी जगहों में जा चुके। ये है बात जो असल समझने की है कि जिस दिन आपके दिल को यकीन हो गया ना कि ये हक है, फिर सारी दुनिया भी आपके कदम रोके तो नहीं रुकेंगे कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा ऑक्सीजन मास्क है, मैं इसके बगैर जी नहीं सकती। ना आप लालच से रुकेंगे, ना आप किसी के डराने से रुकेंगे, ना प्रोपेगंडे से रुकेंगे। इवन आपको 10 शिकवे भी हो जाएंगे ना किसी से, आप कहेंगे नहीं फिर भी मुझे इससे इलाज करवाना है क्योंकि ये मेरे काम की चीज है। सवाल पैदा होता है कि क्या फिरौन ने नहीं देखा था ये सारा मंजर? उसको क्यों ईमान नहीं मिला? इसकी वजह कि फिरौन के अंदर तकब्बुर था। कल का एक जुमला मुझे खुद भी नहीं सारा दिन बोला कि आजजी जो होती है ना, यानी हिदायत को पाने की एक बुनियादी शर्त यह है कि आपके अंदर आजजी हो, और फिरौन के अंदर आजजी नहीं थी। दिख सब कुछ उसको भी रहा था। दूसरी बात, इन आयतों से पहले जो मैंने कहा बीच में कुछ बातों पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसके ऊपर तो हम कर ही रहे हैं। चले इसको पूरा कर लें, वाकये को फिर करूंगी। यानी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। अच्छा, अब आप यहाँ क्या कहेंगे कि ये सब चूंकि अंदर से बिल्कुल नाइस थे, इनके अंदर ग्रज नहीं था, तासुब नहीं था, किसका गिरोह किसकी जमात, तो मान गए। जिनके दिलों में ग्रज होता है ना, ग्रज समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझ के कई कई साल दूसरे से फायदा ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं मिलते, क्योंकि नाम किसी और के साथ जमात का चलता है, किसी और का फिरका, किसी और का मसलक है। फिर आप एक और चीज देख लीजिए, और वो क्या है कि जब हक सामने आया तो उससे पहले कितनी बैड पर्सनैलिटी थी, लेकिन अल्लाह ने चेंज किया, तो मेरे और आपके लिए इसमें अमल है। बड़े से बड़े गुनाह में मुलव्वस किसी शख्स को भी देखकर उसकी हिदायत से मायूस ना हो, ये दुआ करें कि अल्लाह ने उसकी हिदायत लिखी हो। आप उस दिन शेयरिंग सुन रहे थे कुछ साथियों की ना ऑनलाइन से, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि अल्लाह मुझे कुरान के लिए चुनेगा, मैं तो इतनी आगे जा चुकी थी। तो कभी किसी के बच्चे बच्ची, किसी के मियाँ को, अपने आप को, किसी को शराब के नशे में धुत देखकर भी ये कभी ना कह के ये नहीं कभी संभलेगा, मैं इसको क्यों दर्श में बुलाऊं, इन्होंने कहा सुनना है, ये नहीं सुनते, इनको नहीं समझ आनी, ये ऐसे हैं, ये बड़े नशुकरे हैं, और दिस एंड दैट। देखिए इतनी बड़ी मिसाल अल्लाह ने दे के हम सबको उम्मीद दिलाई कि इंशाल्लाह अगर किसी की औलाद में आज कोई खराबी आ गई है, नो प्रॉब्लम, बस ये हक दिखा दे। किसी का शौहर, किसी की बीवी, अपने आप को पहले ले लीजिए, 10 बुराइयां भी हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह करके एक एक हमारी खत्म कर देगा, शर्त एक है कि इंसान के दिल में सच हो। आयत 120, वल्कि सहरतु साजिदीन, और जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। अंदर से बंदा टूटता है ना तो सजदे में गिरता है। सातवें पारे की पहली आयत याद आ रही है, सातवें पारे, वइजा समीउ, किसने सुनी थी, निजाशी और उसके दरबारियों ने क्या सुना था, सूरह तौहा, चंद आयतें, हुआ क्या, आयुनहुम तफीदु मिन दमी, आंखों से आंसू बहे क्यों, मिम्मा रबू, हक, हक को पूछा, हक जिस दिन आप पहचान लेते हैं ना तो आंखें सूखी रहती हैं ना सर खड़ा रहता है, बंदा झुक जाता है सजदों में, इनको हक मिल गया। आप इसको कहिए कि ये न्यू मुस्लिम्स थे। यहाँ एक तकाबुल भी देख लीजिए, बनी इसराइल भी तो वही थी ना, जद्दी पुश्ती मुसलमान, खानदानी मुसलमान, ये सारा कुछ आगे मूसा ने इनके भी सामने रखना है, स्टबन, अपनी जगह से हिलने वाले नहीं, और ये जो है झुक गए। क्या आपको इसमें अपना, हम सब का, जो हम जद्दी पुश्ती मुसलमान है उनका और आज के न्यू मुस्लिम्स का तकाबुल नहीं दिख रहा? आज भी देख लीजिए जो आजजी और जो हम्बलनेस आपको कन्वर्टिस में दिखती है, हमारे अंदर कोई नहीं है, हम अंदर सकड़े पड़े हैं, क्योंकि तहज्जुद भी पढ़ते हैं ना, और हमने तो इतने उम्रे भी कर लिए हैं, ये न्यू मुस्लिम, और वल्ला ही बात सब हमारे कल्चर में कहते हैं ये मुस्लिम, न्यू मुस्लिम्स का नाम होता है, अजीब से नाम से बोलते हैं, अल्लाह अकबर। तो जो ईमान जोश से आता है ना, देखिए इनके अंदर पहले क्या आया, आयत 121 को देखिए, कालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। फिर और क्लियर किया कि कहीं फिरौन अपनी तरफ ना निस्बत ले जाए, कहा कौन सा रब, आयत 122, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन खुद को क्या कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि अब फिरौन तेरी खुदाई से हम निकल गए, हम तो मूसा और हारून के रब पे आ गए। ये कहां से आता है ईमान, इसकी जरूरत है ना हम सबको, इसी को तो पाना चाहते हैं, इतना पुख्ता यकीन, इस्तकामत वाला ईमान। देखिए कल तक इनामात और मरात मांग रहे थे, अभी आगे देखेंगे धमकियों से भी नहीं डरते, कहते करना जो कर ले, मार ही देगा ना कर ले, नो प्रॉब्लम। ये क्या है कि जब बंदे को अल्लाह की बड़ाई का एहसास हो जाता है ना, मेरा रब बहुत बड़ा है, वो मेरा सब कुछ कर सकता है, तो मुझे दूसरे की क्या फिक्र, ये बड़ाई नहीं आई अभी हमारे अंदर, ना आप दुखी रहेंगे क्योंकि अल्लाह आपको हंसाता है, ना परेशान है क्योंकि आपका सब काम अल्लाह करता है। मैंने कई दफा जिक्र किया, अब्दुल्ला बहावलपुरी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर थे, और कहते हैं कि धोती पहन के कॉलेज में जाते थे, इतने सीधे, कभी आप उनकी कोई स्पीच सुने, आपको नेट पे तो शायद ही मिले, बहुत पहले मेरे पास उनकी कैसेट्स थी, मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने अंदर ईमान का बीज उनकी स्पीचेस को सुन के महसूस किया। तो वो यही कहते थे कि एक मौके पे किसी के साथ कोई तूतकार हुई तो उसने जरा इनको धमकियां दे दी, कहते सीधे बहुत है, यानी डायरेक्ट तनकीद कर देते थे, तो लोगों को फिर लोग बुरा मान जाते थे। तो एक दिन कोई ऐसी बात हुई तो किसी ने आके इनको धमकी धमकी दे दी कि प्रोफेसर साहब मैं कोई छोटा बंदा नहीं हूँ, वो थानेदार साहब मेरे दोस्त हैं। यानी उसने दो चार बड़ों की बात सुनाई, कहते वो तो मुझे धमकियां दे के चला गया, फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा अल्लाह तू सुना फिर, मैं तू किसको दोस्त बनाऊं, मेरा दोस्त तो तू है। ये थानेदार जो अभी जान निकल सकती है उसके ऊपर इतना मान करके मुझे धमका गया, तो जब मेरी तेरे साथ दोस्ती है तो फिर मैं क्यों उससे डरूं। वल्लाही ये ईमान बोलता है, ये कभी भी गूंगा नहीं रहता। ईमान की आंखें, ईमान के कान, ईमान के हाथ, ईमान का सब कुछ होता है कि ईमान बोल रहा है। ये जादूगर नहीं बोल रहे, ओल किया, सुज्जदा, भूली भू, सब मजहूल है, पता भी नहीं चलता। आप एक ही बात 10 लोगों से सुने, सेम जुमला आप 10 लोगों के मुंह से कहलवा लें, आप किसी के बोले हुए जुमले बोल के जाके कहीं सुनाए, कभी भी वो असर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है। और अगर आपके अंदर ही नहीं है तो हमारी बातों में इसीलिए तो असर कोई नहीं। और आप देखिए कि एक बात कोई कह देता अल्लाह का बंदा, अल्लाह के वली, तो उनकी बात के आगे कोई सुनता नहीं। वजह क्या कि सच्चा ईमान आ गया, डंके की चोट पे हक का ऐलान। और कहाँ खड़े हैं, वक्त की सुपर पावर के सामने है। अल्लाह के नबी ने कहा कि बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है, और ये जादूगर उसकी आप देख लीजिए कि एक रोशन दलील है। उनको पता चल गया, उनको पता जादू नहीं है, मूसा के पास कुछ और है। अब फिरौन की तो अना पे चोट पड़ गई, आप कह लें कि उसकी तो दुम पे किसी ने पाँव रख दिया, चीख उठा। आयत 123, काला फिरौन आमन तुम भी ही कबल नाजन लकुम। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये जरूरत कि तुम ईमान ले आए हो इस पर कि इससे कबल मैं तुम्हें इजाजत दूं। ये देखिए वक्त के डिक्टेटर्स और वक्त के जो आमिर होते हैं ना, उनका ये रवैया होता है कि लोगों को ईमान लाने के लिए भी उनसे इजाजत की जरूरत है। और बाज घर के छोटे छोटे मजाजी खुदा भी यही गुमान करते हैं कि हमारी बीवियों को ईमान लाने से पहले हमसे इजाजत लेनी चाहिए। और देखिए अब अपने ही साथियों पे शक, इन नहाज़ा लमकरुम मकर तुमूहु फिल मदीना, ये तुम सब की एक सोची समझी साजिश है जो तुम सब ने मिलकर चली है शहर के अंदर। ये किस पे कह रहा है, अपने जादूगर, अपने बंदे। यहां से थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिक्टेटरशिप पे, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए कि फिरौन के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो कैसे थे, चापलूस। उन्होंने फिरौन को कोई अच्छा मशवरा दिया नहीं दिया, बजाय इसके समझाता बुझाते उन्होंने उसको और प्रवोक किया कि हाँ बुलाओ शहर से हरकारे, दिस एंड दैट, दिस 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 दिस, और ये वो, और ये तुम्हें शहर से निकाल रहा है। हालांकि आप देखिए कि अच्छा मशवरा देते तो फिरौन मान जाता। वजह क्या थी कि फिरौन डिक्टेटर था, समझते हैं? डिक्टेटर कौन होता है कि जिसको सिर्फ अपनी बात करनी होती है, बिकॉज आई सेड, ये उनका स्लोगन होता है। ये क्यों करो, बिकॉज आई सेड, क्यों करो, बिकॉज आई लाइक दिस। यहां से आप फिरौन के और बाद के दौर के लोगों का तकाबुल करके देख लीजिए कि फिरौन को अपने इर्द गिर्द वो लोग चाहिए थे जो उसको पसंद करें। मैं और आप अपने मिजाज को खुद समझ सकते हैं अपने दोस्तों के एंगल में, ना तो हम कोई फिरौन है, ना हम सदर है, ना बादशाह, हम तो सीधे से लोग हैं। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द किन लोगों को रखती हूँ? कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको अपने इर्द गिर्द सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो उनकी तारीफें करें। आप कितनी अच्छी हैं, आप चाय कितनी अच्छी पकाती हैं, आप कपड़े कितने प्यारे पहनती हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप कैसे हैं। समझ लीजिए कि अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के बातें करने वाले लोग हैं ना, तो कोई ना कोई रंग इधर से आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, गलत चीज होती है। और ऐसे लोग जिनको अपनी जात को प्रोजेक्ट करना होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक धाता बनाते हैं। फिर जाहिर है कि अपने लोगों को बुरा भी नहीं कहेंगे, तारीफें कराने वालों को करनी भी तो पड़ती है ना। इसके बरक्स मूसा को देख लीजिए या बाद में नबी सल्लम को देखिए, आपकी पर्सनैलिटी इस मामले में बिल्कुल फर्क थी। सूरत आल इमरान में आप नबी सल्लम का इतना खूबसूरत रूप पढ़ चुके हैं, किफा भी रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम। एक नबी का किरदार है, आप नरम थे, मशवरा करते थे, साथियों की गलतियों को माफ कर देते थे। क्यों? क्योंकि आप आमिर नहीं थे। अलिफ वाला आमिर कह रही हूँ, आइन से ना कोई लिख दे, क्योंकि हमारे कल्चर में अलिफ से कम लिखा जाता है ना, तो आमिर से अमर, बहुत हुक्म देने वाला। ये वही है जो 13वें पारे के शुरू में हम पढ़ेंगे, इन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। तो जब सिस्टम्स ये बन जाते हैं ना, तो फिर आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिरौन खुद तो बुरा था बेचारा, उसके साथियों ने बुरा बनाया। इसके बरक्स नबी सल्लम का क्या हुक्म है? आपने अपने साथियों को जो नसीहतें की, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम अपने ऊपर लेके देखें, تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں یہ ہوش مند ہونے چاہیے، متقی رہیں. آگے پڑھیں گے سورہ کہف میں بھی ہم ہر ویک پڑھتے ہیں کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے اندر گھیرے رکھو جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں. آج اس لوگوں میں رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ آپ غریبی کو پسند کرتے تھے. آپ کی ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے فی زمرۃ المساکین، مجھے مسکینوں کے زمرے میں رکھ. ٹھیک ہے، تو اپنے ارد گرد دوست چیک کیجئے کیسے ہیں. جو لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں نا، آپ مزہ بڑا آتا ہے، لیکن واللہ وہ صرف اس لیے کہ آج آپ ان کو کھلا پلا رہے ہیں، آج گھر میں دولت کی ریل پیل ہے. جب یہ چیزیں جاتی ہیں نا تو وہ سب نکل جاتا ہے، اور سچے دین کے ساتھی ہی قائم آتے ہیں. دین کے نام پہ جب آپ کی محبتیں بن رہی ہیں نا، جو میں گمان کرتی ہوں وہ بہت فرق ہوں گی ان محبتوں سے جو اس سے پہلے کی تھی. اس میں سچ ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیے کہ فرعون کے جو ساتھی تھے انہوں نے فرعون کو کیوں اتنا ڈرا دیا ایک چھوٹی سی رسی سے. یہاں بات کروں گی جو پیچھے سے رکی ہوئی تھی، یہاں کرتے ہیں. دیکھیے کہ فرعون کو موسیٰ کی لاٹھی سے کوئی اتنا سروکار نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی تھی نا اس سے ڈرتا تھا. فرعون کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی یہ بات اگر عام ہو گئی تو میں نے جو اپنا ایک بڑا خوبصورت دھندا سجا رکھا ہے وہ تو کلیپ کر جائے گا نا. کل کے سبق میں بات ہوئی نا مالی معاملات میں، کہ آج بہت سارے لوگ اسلام کی اکنامکس کو کیوں نہیں لاتے سامنے، کہ ان کو پتا ہے کہ پھر ہمارا بہت سارا ویسٹرن سٹائل کلیپ کر جائے گا. بالکل اسی طرح سے ہر دور میں لوگوں نے اسلام، کیونکہ اس وقت موسیٰ اسلام کے دائی ہیں، وہ اسلام تھا آج جیسے ہمارے پاس ہے، جیسے کل وہ موسیٰ کے آگے عصا سے ڈرے نا، آج کے لوگ بھی کانپتے ہیں اسلام سے. صرف ایک گز کا ٹکڑا کیوں لوگوں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے؟ کہ ایک لڑکی اگر سر پہ کپڑا لے آتی ہے کیوں سکولوں میں اس کو مسئلہ ہے؟ کیوں لوگ کورٹ پہ چلے گئے نام لینے کی نہ ضرورت ہے، سب کو پتا ہے. صرف ایک چھوٹا سا نکاب آج کیوں ہے؟ یہ آدھے گز کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے. اور آج بھی لوگ اس مسلم آئیڈیالوجی سے ڈرتے ہیں کہ یہ عام ہو گئی تو ہمارا وہ، آپ ایک جگہ پڑھیں گے مجھے یاد نہیں کہا ہے، کہ طریقہ تم المسلح شاید سر شرع میں ہوگا. فرعون کہتا ہے تم میرے مثالی طریقے کو ہرٹ کرتے ہو، یعنی وہ کہتا ہے اٹس بیسٹ لائف اسٹائل، تم اپنا اسلام کیا لاتے ہو. اور اگر آج ہم مسلمان اپنی اس آئیڈیالوجی کے اوپر خود چل پڑے نا، حیرت ہوگی کہ ہم اپنے اسلام کے کلچر کو عام کریں، اسی سے یہ ڈرتے ہیں. ہاں کل وہی ٹکڑا کوئی اور ایک کوئی نام انگلش کا ہوگا تو پہن لیں گے تو وہ فیشن بن جائے گا، کوئی کیٹ واک میں پہن کے آ جائے گی تو ہو جائے گا. اور واللہ ہی ایسے ظلم ہوتے ہیں، جسم نیچے ننگے اور اوپر سے منہ چھپا کے دکھا دیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یقین نہیں اپنے اسلام کا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ذہنی غلامی سے نکال دے. فرعون اپنے ساتھیوں پہ الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے کہ یہ تو مکر ہے، چال ہے. یہاں سے ایک اور بات عمل کی لکھ لیجئے کہ جن لیڈرز کی اپنی پرسنالٹی میں ہول ہوتے ہیں نا، شیکی پرسنالٹیز، وہ اپنے ساتھیوں پہ بھی کبھی ٹرسٹ نہیں کرتے. دیکھیے ابھی جادوگروں کو بلایا، اب کہہ رہے تم مکر کر رہے ہو، مجھے دھوکے دے رہے ہو. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باسیوں کو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا. کیا پتہ چلا کہ اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور جن لیڈرز کے اپنے کردار میں جھول ہے، ایک کے پاس بیٹھے تو دوسری کی برائی، دوسرے کے پاس بیٹھے تو پہلے کی برائی، وہ کبھی بھی اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ اپنا کریکٹر اسٹرانگ کرتے جائیں، پھر دنیا کی کسی عدالت میں کوئی آپ کو لے جاتا ہے تو کہیں چلو شوق سے چلو، وہ کام ہو جائے گا جو موسیٰ کے لیے فرعون نے کرایا. ایک اور نقطہ اس میں دیکھیے، موسیٰ کے پاس حق تھا نا، اکیلے موسیٰ کے کیا ریسورسز تھے؟ گلی گلی پھرتے لوگوں میں، اللہ کا نبی ہوں، انی رسول اللہ، اور فلاں فلاں میری بات مانو، کتنے کو لوگ جمع ہوتے. اور موسیٰ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، جیسے آج قرآن ہے، موسیٰ نہیں پیش کر سکتے تھے. اللہ نے کس کو ذریعہ بنایا؟ فرعون کو. یہ ہے وہ حدیث جس کو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے اور بہت ہی زیادہ اس پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، کہ اللہ بعض دفعہ اپنے دین کے کام فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے. جیسے فرعون سے لیا، خود ہر کارے بلائے، بلاؤ اس کو. فرعون نے اپنے پورے ریسورسز یوز کیے، اس کا میڈیا یوز ہوا، اس کے لوگ یوز ہوئے، اس کا ہال یوز ہوا، اور بظاہر وہ کام اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ نے اسلام کا فائدہ کیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا، بدنام ہوں گے تو کیا کیا نام نہ ہوگا. 9/11 के बाद जितना इस्लाम अमेरिका कनाडा में फैला है, सुभान अल्लाह, खुद एक्सपोज कर दिया। मैंने खुद, एक चाइनीज था हमारी जो स्कूल की वहां बिल्डिंग थी, तो ओनर जो था चाइनीज था, तो किसी मौके पे हम उसके पास बैठे थे, तो फिर थोड़ी इस्लाम की बात की, कहता यस आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं देखूं, इट्स वेरी फेमस रिलीजन। उन्हीं दिनों के ये वाकयात थे। कहता कि मुझे भी कुछ इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं जरा इस्लाम पढ़ूं, क्योंकि ये आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, क्योंकि हर खबर में, हर न्यूज में तो ये बातें हैं ना। तो मेरे काम की अल्लाह को जरूरत नहीं है वल्लाही, अगर मैं अपने रिसोर्सेज अल्लाह के दीन पे नहीं लगा रही ना, तो अल्लाह कहते घर रखो, कब्र में ले जाना अपने साथ, मैं खुद कराऊंगा अपने काम। और अल्लाह कराता। अल्लाह ने फिरौन के रिसोर्सेज उस दौर के इस्लाम को प्रमोट कराने के लिए लगाए, तो क्या आज अल्लाह मेरी आपकी ये छोटी छोटी कोशिशों को देख रहा है? ये अल्लाह खुद कराता है। जब लोग नहीं करते ना काम, तो अल्लाह करवाता है। और असल बात यह है कि अल्लाह ने अपना दीन फैलाना है। हदीस में आता है कि क्यामत से पहले मट्टी के घरों में भी इस्लाम आएगा, ताकतवर की ताकत के साथ और कमजोर की कमजोरी के साथ। और आज आप देखिए, नेट को देख लीजिए, क्या क्या तरीके हैं खूबसूरत, कि जिसके तरीके से इस्लाम आ रहा है। हम सोए लेकिन वो काम कर रहे हैं।